हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी फोटो तक को स्त्रियों को स्पर्श वर्जित है, तो स्त्रियों को गले में चेन में हनुमान जी की मूर्ति पहनने का उचित है क्या?
वो तो स्पर्श का वर्जित हो जो
ठीक है,
मगर वर्जित है वो तुम पहननी चाहिए।
आप कहते हैं सबको पैर छू कर प्रणाम करना चाहिए, फिर आप अपने चरण कमलों को छूने से क्यों इनकार करते हैं?
मैं अपने को योग्य नहीं मानता ऐसा, मैं जब चरण छूने को नहीं देता हूँ तो शास्त्र में ऐसे आया है कि संतों का चरण छूते ही कल्याण हो जाता है, ये हुआ तो है ना श्लोक, यत् पाद पंकज रसैनम विना भी सन्नप्यसन्नेव परः पुरुष पुरासीत। जिन गुरु महाराज के चरणों की रज्जी की कृपा न होने से, उसके स्पर्श न करने से सन्नप्यसन्न माना होता हुआ भी परमात्मा नहीं की जनक था। वो यद पाद पंकज रसैनाथ, जिस दिन भगवान महाराज के चरणों की रज्जी का आश्रय लिया तो नासीत न शास्त्र न भविष्य भेद बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं थी नहीं है नहीं होगी, ऐसे चरणों के स्पर्श के ऐसा हो जाता है। तो मेरे चरणों के स्पर्श से ऐसा होगा नहीं तो शास्त्र में अविश्वास होगा, मेरा चरण स्पर्श करेंगे रज्जी स्वीकार करेंगे और नासी न शास्त्री न भविष्य भेद बुद्धि, ये संक्षिप्त शरीर का श्लोक है। तो ऐसा करने से उनको परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो संदेह होता है कि जिनकी चरण रज्जि लेने से भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, एक परमात्म तत्व बोध हो जाता है, चरण तो हमने स्पर्श कर लिया और हमारे बोध हुआ ही नहीं तो क्या बात है, शास्त्र की बात असिद्ध है, ये बाबा जी ऐसे ही है ये बात पैदा होगी ही, तो शास्त्र की बात सच्ची रहे तो मेरे में अश्रद्धा ही पैदा होगी, तो ना आपके फायदा ना मेरे फायदा, क्या किया ना?
ठीक है,
अब इस संकल्प करो अब बोलो भाई, उसका अनुभव हो जाए तब तो ठीक है, परंतु ऐसा मेरे को दिखता नहीं कि मेरे चरणों को छूने से तो बोध हो जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है।
आपका प्रश्न क्या? नहीं, आपका प्रश्न तो आप बोलो,
अब प्रश्न हो बोलो भाई,
भाई का प्रश्न वो बोलो भाई, जो बोलना चाहता हूँ, जो प्रश्न लिखा है ये किसे लिखा है,
जो उसने प्रश्न किया है वो बोले, शंका करे वो,
जिसने शंका की वो भाई बोले भाई,
हाँ डरो मत, तू
डरो मत, डरो मत,
निर बोलो,
आप है क्या, आपने लिखा क्या,
आ जाओ
आगे, आ जाओ
आगे, आप बोलो, शंका करो,
नारायण नारायण बोलो, किस भाई का प्रश्न कोई हो तो बोलो भाई, महाराज जी पैर क्यों नहीं छूने देते हैं?
मानो शंका है ना, वो जब तक आपके समाधान न हो तब तक शंका करने का आपको अधिकार है और संतोष है, ठीक है,
किसी भाई का भाई। आज प्रातः आपने गोपी भाव भक्ति योग का सर्वोच्च क्रमांक बताया और हनुमान जी का दास भाव और अर्जुन का सख्य भाव एक गोपी भाव के श्रेणी के बराबर या उसके कम है?
कम नहीं है, बराबर है। मानो कोई भाव पूर्णता होने पर एक समान हो जाते हैं, जब तक कुछ अधूरा भाव रहता है तब तक कम ही रहती है, पूर्ण भाव होने पर सब एक समान हो जाते हैं। व्यास्य भाव उनका माधुर्य कम नहीं था।
आपने आज फरमाया कि पहले भक्ति होती है फिर ज्ञान होता है,
शंकर मत है। भगवान श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि अंतःकरण में तीन दोष है। उस संप्रदाय में जितने ग्रंथ है उन ग्रंथों की ये पद्धति है कि पहले मल दोष दूर होता है, फिर विक्षेप दोष दूर होता है, फिर आवरण दोष दूर होता है। मल विक्षेप आवरण तीन अंतःकरण के दोष है। उसमें चल के मैं मिट्टी घुली उसका विस्तार बताया है, थोड़ा विस्तार से कह दूं को दू। जैसे जल है, जैसे गंगा जल है अपने दिखता है ना, तो इस गंगा जल में मिट्टी घुली हुई है, तो मिट्टी घुली हुई है ऐसे ही अंतःकरण में सात्विक राजस भाव मिले हुए हैं, तो अंतःकरण है वो तो है शुद्ध प्रकृति का कार्य, परंतु प्रकृति के सत्व रजोत्तम गुण ये मिले हुए हैं, वो मिले हुए से अंतःकरण अशुद्ध हो गया। तो अशुद्धि तीन तरह की होती है। एक अंतःकरण में मल दोष है, मानो पाप अनेक किए हुए हैं, उन पापों के संस्कार है भीतर जिससे बुरी बुरी वृत्तियां पैदा होती है, वो पाप है, उसको मल दोष कहते हैं। और एक चित्त में चंचलता का दोष है, जो मन लगता नहीं, स्थिर नहीं होता, तो स्थिर नहीं होने से अथिर रहता है, तो वो चंचलता का दोष है। और एक अंतःकरण में ज्ञान नहीं, क्या है मैं जानता नहीं, कुछ को मेरे को पता नहीं है, ये है अज्ञता का दोष। तो एक अज्ञता का दोष है, ये आवरण है, मानो आवरण ढकने से वो आवरण दूर होने से दिख जाएगा, तो ये तीन दोष हुए। तो ऐसे जल है साफ, उस जल में एक तो है मिट्टी घुली हुई और एक उसमें हवा लगती है जिससे जल विचलित होता है ऐसे, और एक ऊपर छाया कर दी तो सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं दिखता। तो तीन दोष हुए, पानी चलता है उसमें मिट्टी घुली हुई है और ऊपर आवरण है और नीचे जल चलायमान है, तो मिट्टी घुली है तो मल दोष है और उसकी चंचलता है, ये अस्थिरता है, स्थिरता नहीं, ये चंचलता का दोष है। और ऊपर ढक्कन है जिस सूर्य सामने दिखता नहीं, अगर सूर्य दिखा तो भी वो साफ दिखता नहीं, मिट्टी और चंचलता होने के कारण से आवरण दोष है। तो तीन दोष है, तीन दोषों में मल दोष जो पापों का है, वो पापों का दोष पुण्य से दूर होगा है। तो पुण्य क्या है कि निष्काम भाव से दुनिया की सेवा की जाए और व्रत आदि किए जाए, जैसे शुद्ध नियम है उनका पालन किया जाए, तो वे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उनसे मल दोष दूर हो जाता है। तो कर्मयोग मल दोष दूर करता है, मल दोष दूर हो गया। अब चंचलता का दोष दूर होता है उपासना से, परमात्मा को सामने रखकर चित्त बार बार समय समय उपनमेद बुद्धि ही तया, और इस आज्ञा अभ्यास होता है। यतो यतो निश्चरति मनस चंचल मत्सरम ततस्ततो नियमित आत्मनि एव वशमेत, ये अभ्यास है। मन चित्त जय जय घूमे तो उसे हटा हटा कर भगवान में लगाना, हटा कर भगवान में लगाना, ये है उपासना, ये है भक्ति। इससे चंचलता का दोष दूर होता है। और जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से आवरण ढक्कन, मैं जानता नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है क्या है तत्व क्या है, ऐसा ये आवरण दोष है। आवरण दोष ज्ञान से दूर होता है। तब तो ज्ञान होता है तू तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। जैसे गोस्वामी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। तो चेतन और अमल ये मल दोष चला गया, सहज सुखराशी का अनुभव नहीं होता। आवरण दोष दूर होते ही सच्चिदानंद परमात्मा का आविर्भाव है, वो प्रकट हो जाता है। वो कोई आता नहीं है, किंतु सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक ही जल पर पड़ जाता है। ऐसे परमात्म तत्व का बोध होते ही मल विक्षेप आवरण दोष दूर हो जाते हैं। तो मल दोष दूर करता है कर्मयोग, विक्षेप दोष दूर करता है भक्ति योग, आवरण दोष दूर करता है ज्ञान योग। ये प्रक्रिया है। तो उसमें पहले मल दोष दूर करने के निष्काम भाव से कर्म करो, फिर उपासना संसरता का दोष दूर करने की उपासना भक्ति करो, इसके बाद में ज्ञान करो, जिसे ज्ञान से आवरण दोष दूर हो जाए, परमात्मा का अनुभव हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये प्रक्रिया है। शंकर संप्रदाय है ना, भगवान श्री शंकराचार्य हुए हैं, उनके मत के अनुसार ये है। वैसे बहुत से अच्छे अच्छे ग्रंथ हुए हैं उन संप्रदाय में, बड़े अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे ग्रंथ। तो उन ग्रंथों की प्रक्रिया ये है। तो उसमें पहले मग दोष दूर, फिर भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, वहाँ बात कही है।
ये फिर आया महाराज कि हमें निश्चित पता है, विश्वास है कि आपकी चरण स्पर्श समाप्ति से मुक्ति अवश्य होगी, फिर भी आप चरण स्पर्श क्यों नहीं करने देते?
आप करती है तो आप करा, आपको करा कर दिखा दें, हमारे चरण छू लो, या आप जैसी है तैसी अवस्था रही तो आपकी चरण छूटी है, तो बोध हो गया तो सच्ची है। हमारे को पता लग जाए कि मेरी चरणों की लज्जी से तीन दोष दूर हो जाते हैं, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं तो आपसे छाने ही अपने चरण धो करके कुएं में डाल दूं, जिसमें सदा पिए स्वर्ण कल्याण हो जाए। तो गर्व फाड़ने क्यों पड़े मैंने, सीधी सादी बात है। तो आपका ऐसा पक्का विचार है तो कोई बात नहीं, इतने आदमियों में मेरी फजी थी सही, आ जाओ स्पर्श कर दो, अपन परीक्षा करें।
भेजा भाई कौन भेजा, वो बैंड ने भेजा।
तो बहन को तो मैं छुआता नहीं हूँ मैं, अब चरणों की रज्जी तुम भी ले लो, अगर हो जाए तो चरण रज्जी में ये है, महात्माओं की चरण रज्जी में विशेष ये विश्व लेख लिखा है मैंने,
लेख
इस विषय में लेख है,
लेख है
सत्संग की विलक्षणता नाम एक पुस्तक है, उसमें लेख ऊपर लो, जो चरण जी का क्या तात्पर्य है जो खोला है। बरामदे में रहने वालों के साथ अत्याचार करने वालों, एक कमरे से एक ही आदमी को ठहरने वालों, जबकि वो भस्मासी से काम चल सकता है।
बरामदे में रहने वालों के साथ अत्याचार करने वालों, एक कमरे में एक ही आदमी को ठहराने वालों, जबकि एक अलमारी से काम चल सकता है। धनी आदमियों को कमरा प्राथमिकता से मिलता है, परंतु भजन साधन सत्संग करने वाले को 20-20 आदमियों को, औरतों को एक साथ दिया जाता है। अस्पष्ट निष्पक्ष प्रेरणादायक प्रवचन करें, उनकी क्या गति होगी? कल जो आप गया उससे तो अन्याय करने वालों का हौसला बढ़ा था। कल ये कहा था अपने, जो जवान दे देते हैं कमरा खाली कर देंगे और वो कमरा नहीं खालते, उनके लिए अनुचित बात है।
बिल्कुल अनुचित है, पहले जवान दे दी, अपनी जवान को असत्य कर दे, बहुत खराब चीज है। हमें क्या हमने सीखा। अब एक कमरे में एक स्त्री बैठी है, दूसरे को नहीं ठहराते, एक में आठ और दस दस ठहराते हैं, तो दस दस ठहरने वालों की तो है महिमा, एक आदमी रोक ले उसकी निंदा, ये हम मानते हैं सर, उसका अत्याचार है। और ये ठहराने वालों को भी चाहिए कि ऐसा करे, वे किस कारण से ऐसा करते वो कारण पूरा वही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं किस कारण से एक में दस आदमी दे दिया, एक में एक लीजिए बैठी है, किस कारण से दिया। धनी आदमियों को देते हैं, निर्धनों को नहीं देते हैं, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। अरे होती है तो अन्याय है। सत्संग करने वालों को कमर देना चाहिए और सत्संग नहीं करते उनको कमर देना नहीं चाहिए। मेरे से पूछो तो साफ बात यह है, क्योंकि ये कमरे बनाए गए हैं सैर सपाटा करने वालों के लिए नहीं है, केवल सत्संगियों के लिए है। जो ऊपर दिखा हुआ है ये भवन बना गया केवल सत्संगियों के लिए, पढ़वा तो सत्संग करने वाले इसमें ठहरे, ऐसा आराम ठहरने वाले अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, तो सत्संग नहीं करते और ठहरते उन कमरों में। और सत्संगियों के लिए निरंतर पड़ा रहना पड़ता है, कमरे मिलते नहीं और सत्संग नहीं करते हैं, वे कमरों में सुख भोगते हैं, महान पाप करते हैं, गंगा जी किनारे आकर के अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप भोगना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। अभी चाहे न माने आप, फिर चेत होगा, फिर क्या हाथ में कुछ रहेगा नहीं, अभी से कृपा करो, सत्संग में आओ सत्संग सब समय, और नहीं तो फिर वो बात होगी, आप भी सत्संगी बनो ऐसे तो आपके लाभ होगा। कमरा रोक कर बैठे हैं, ऐसा आराम करते हैं, ताश ऊपर खेलते हैं, ऐसे मैंने सुना है, पूरा पता नहीं। और एक आदमी बड़ी विचित्र घटना सुनी, मजा पीता है कि हम तो पियेंगे, ऐसा उत्तर दिया, ऐसी बात सच्ची है झूठी मेरे को पता नहीं, सुनी मैंने जरूर है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है। ऐसे आदमी को कमरे में निकाल देना चाहिए, उस कमरे में नहीं, गीता भवन में आकर मजा पीते हैं, ऐसे व्यसन करते हैं, गीता भवन में ठहरते हैं, उनको कभी नहीं ठहरना चाहिए। उनको कहना ना पड़े कि तुम निकल जाओ, ये कहना नहीं पड़े, उन खुद को निर्वाण हो जाना चाहिए, पीछे गोल करके जयराम जी जी ऐसे दुर्व्यसन करने वालों को गीता भवन में रहना नहीं चाहिए। कोई कह सर हो तो कि नहीं भाई हम नहीं ठहरे उस जगह, इस जगह उनका अधिकार नहीं है, केवल सत्संगियों का अधिकार है यहाँ, सत्संग करने वालों का।
वैश्य समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कुछ कहने के लिए विशेष निवेदन है। धनी वैश्य भाइयों ने लाखों रुपए विवाह में लगा करके गरीब वैश्य भाइयों के लिए समस्या पैदा कर दी,
बहुत बड़ी बात,
जिसके लिए तीन या चार कन्याएं हैं उनके बड़ी भारी समस्या हो गई है।
बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हम तो भाई कह सकते हैं, हमारे पास पुलिस नहीं है कि जिसे खाली करा दें कुछ कर दें, हमारे पास लड़ाई करना है भी नहीं, हमारे विचार भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है हमारे पास, क्या करें। हम तो कह सकते हैं, एक कहावत आती है मारवाड़ी, बामण गैस छूट रहे और बैल बैस छूट रहे, और क्या करें।
दहेज का प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, वो पहले बोल चुका तो दहेज की बात हुई।
व्यवस्था ठीक करने वाला है व्यवस्थापकों का, व्यवस्थापक है उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो बहुत वर्षों से सत्संग में हूँ, 50 वर्ष हो गए मेरे को, पर मैंने पंचायती कभी नहीं करी है। बोलने वालों के लिए भी मैंने अपनी दृष्टि से अपनी तरफ से ऐसा नहीं कहा अमुक व्याख्यान बोलेगा अमुक नहीं बोलेगा, ऐसी व्यवस्था भी मैंने की नहीं है। जो मुख्य वक्ता मेरे कोई मानते हैं, पर जो वक्ता कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये व्यवस्था मैं नहीं करता हूँ। मेरे को बताओ बोल दूंगा मैं। शेर जी थे उस समय भी मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा शेर जी मेरे को तो पकड़ कर ले जावे और बैठा दे कि अमुक बात बोलो, मेरा कह दो रामायण बोलो गीता जी बोलो अमुक बात बोलो वो बोल दूंगा। शेर जी का पकड़ ले जाओ नहीं बुला कर ले जाओ ऐसा बोलो। मैंने तो कहा मेरे पकड़ ले जाए बैठा के, और कहते अमुक बोलो बोल दूंगा, इतना ही काम मेरा है। कौन आवे कौन जावे, कौन व्याख्यान दे कौन व्याख्यान नहीं दे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो जल्दी का पकड़ ले जाओ, नहीं बुला कर दे जाओ, यूं करना चाहिए, ठीक हो यूं करो। बहुत पुरानी बात है
स्वामी जी, रेल और बस तो अपना नियम छोड़ती नहीं, समय से पहले नहीं आती, बाद में आ सकती है, लेकिन एक ही दिन अगर जहन पड़ा है उसमें 10:30 की बजाय 7 बजे भोजन करने के लिए भागते हैं, तो उसमें क्या उसी तक कौन सा नियम कब परिवर्तन किया जाए, कितने समय तक परिवर्तन किया जाए कि भाई आज तो आज 10:30 रोज 10:30 बजे भोजन होता था, तो आज 10:30 बजे भोजन नहीं कर सकेंगे, तो 7 बजे ही भोजन के लिए भागना है।
वो तो भाग तो आज जरूर है, शूटिंग हो जाएगा, इस बार भाग तो सीख करते मन मेरे मिल जाए अच्छी बात है, सूत्र से पहले पहले भोजन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। भागने में तो सबको भागना चाहिए, सबको ही लाना चाहिए, सबको ही भोजन देना चाहिए, बैठ कर नहीं पाओ इसलिए जगह नहीं हो तो पत्रों दिल्ली कर जाओ, फिर दिन के दिन पाओ एक पर बैठ जाओ पाओ, और जगह हो तो सबको पंक्ति कराना कराना चाहिए भोजन, फिर जल्दी कराना चाहिए, तो सूत्र लग जाएगा। फिर
सत्यनारायण जी बोले हैं चरण रस के बारे में आप कुछ पेश कर बताना चाहो तो बता दो, मुझे समझो
क्या होता है।
अरे दहेज वाला प्रश्न था,
दहेज वाला दहेज की समस्या,
पालने वाले उनको मालूम होता है कि हमारी ऐसी श्रद्धा है, वो श्रद्धा है नहीं, ना तो उनकी श्रद्धा है ना मेरी महत्ता है, दोनों चीज नहीं है। मेरे चरणों का प्रभाव हृदय का प्रभाव ऐसा वो मैं नहीं मानता, मेरे में नहीं है, अगर चरण जी कल्याण हो जाए ऐसे चरण छोड़ने वालों की श्रद्धा नहीं है, दोनों की कमी है। ऐसे प्रश्न बोलो आपकी मेरी पूरी ऐसी श्रद्धा है तो माता बहनों को देखो धूल देते हैं उनको मना करता हूँ, धूल बने को धूल पड़ेगी कर्म में, ऐसा करता हूँ मेरे चरणों में धूल देती है ना, कर्म में धूल ही पड़ेगी, धूल ही देते हो तो मैं मना करता हूँ। अरे जबरदस्ती कोई छाने अर्थ जाते हैं छाने छू लेते हैं तो डाका डालने से चोरी करने से कल्याण होता है क्या, जबरदस्ती मेरा पैर छू ले तो डाका डालना है, थाने से मेरी रजी ले तो तन छू लेना, ये चोरी करनी है, चोरी का डाके का दंड होता है, कल्याण नहीं होता है। बोलो इसमें शंका करो, जब चरणों की रज्जी का इतना प्रभाव है तो मेरी जबान का कितना प्रभाव होना चाहिए, आप अच्छा कर दो। सबसे नीचा है मेरा चरण और चरणों की रज्जी, और सबसे ऊंचा उत्तमांग है ये, और उसमें भी है वाणी, मेरी वाणी पर तो लात मारते हैं और सोने से मेरी रज्जी लेते हैं, उसे क्या होगा बताओ, नरक होंगे, मेरी वाणी पर लात मारते हैं, मैं ना कहता हूं मानते नहीं लात मारते हैं, तो मेरी जबान पर लात मारते का क्या होगा, दोष लगेगा, मैं निषेध करता हूं वो। मैंने संतों से एक बात सुनी है कि संत महात्मा पुरुष कहे वैसा न करने से तो लाभ से वंचित रहते हैं, परंतु वे नहीं कहते हैं और उसको करते हैं तो नरक में जाते हैं। फिर सुन लो सावधानी से, मानो संत महात्मा कहे और उसके अनुसार जीवन नहीं बनावे तो उनको क्या है कि जो कहने के वाले हैं वो महात्म होता है, वो लाभ उनको नहीं होगा क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन करी नहीं, लाभ कैसे होगा। पर निषेध कर देगा ऐसा मत करो, और वो करेगा तो उसको दंड होगा और नरक होगा, क्योंकि उनकी आज्ञा का आज्ञा का भंग आ गया, भंग की आज्ञा पर जबान पर लात मारी है तो उसका दोष लगेगा। इस वास्ते शास्त्र के निषेध वचन करने का उसको पाप लगेगा, और शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा। विरुद्ध काम करने से जो लाभ होता है वो लाभ नहीं होगा पर नुकसान नहीं होगा। आगे समझ नहीं आज भाई पूछू, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मानो विधि निषेध दो बात है, तो निषेध कर दिया वो काम बिल्कुल मत करो। विरुद्ध काम न करने से लाभ से वंचित रहो, पाप नहीं लगेगा, और निषेध कर्म करने से पाप लगेगा। महात्माओं के संग से लाभ चाहते हैं पर कहना मानते नहीं, तो लाभ कैसे हो जाएगा? और मैं जो कहता हूं वो मेरे वचन नहीं है, गीता है, भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, महाभारत है, आदि आदि जो ऋषियों के ग्रंथ है उनके अनुसार ही मैं तो चेष्टा करता हूं कहूं। विपरीत उद्विग्नता के मैं नहीं कहूं ऐसे ख्याल रखता हूं। आपको कोई ऐसा वचन मालूम होता हो तो मेरे को निषेध कर दो, मैं आपका दोष नहीं मानूंगा, बुरा भी नहीं मानूंगा। कोई निकल जाए ऐसा ही वचन जो शास्त्रीय आज्ञा से विरुद्ध हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा। और मैं जितनी बातें कहता हूं मेरी समझ में गीता जी की, भागवत जी और इसकी बात करके आप करो तो आपका कल्याण, मैं करूं तो मेरा कल्याण। मुझे बातें ऐसी है, मैं तो कई दफे कहता हूं जैसे पोस्टमैन होता है किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को रुपया दे देता है, तो घर्षण देता है या वो तुम्हारे नाम कार्ड है कार्ड दे, तुम्हारा लिफाफा दे दो, तुम्हारे नाम रुपया है रुपया दे दे। ऐसे आपके नाम से जो शास्त्रों में बातें हैं वो हम कह देते हैं, हम तो दाखिल बिचर कर देते हैं, अब ले लो अपनी अपनी चीज ले लो और हम क्या करें, अब लो नहीं लो आपकी मर्जी है। ये पुराने ऋषि मुनियों का समाचार है हम लोगों के लिए, डाक आई है ये। इस बार इसके अनुसार से जीवन बनाओ, हमें लाभ होगा। मेरा भी विश्वास है कि सत्संग में सुनी हुई जो शास्त्रों की ऋषि मुनियों की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, उनके अनुसार जीवन बनाने से लाभ होता है। मेरा विश्वास है जरूर होता है लाभ, हुआ है लाभ, अगर होगा ठोस चीज है, ऋषि महापुरुषों ने अनुभव करके कहा है हमारे कल्याण के लिए। आज की तरह पीएचडी पदवी लेने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे हैं, अपने अनुभव को प्रकाशित किया जिससे लोगों का कल्याण हो जाए इस भाव से लिखे हैं, अपनी पदवी प्राप्त करने के लिए। विश्वास की उनकी दया होगी, जो पालन करेगा उसको संतों की, भगवान की, महात्माओं की कृपा होगी। तो मेरा कहना माना, आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान सेवा नहीं है। और वचन कहने पर वो नहीं मानता है तो दंड होता है, राज की कोई आज्ञा हो जाए नहीं मानता है तो दंड मिलता है। इस बात में आगे न माने मैंने कहिए लाभ नहीं होगा, इतना ही क्या मैं दंड नहीं बताया। बात बीज कही जाए न मोले तो लाभ से वंचित होंगे, और राज की आज्ञा नहीं मान तो दंड होगा। राजा क्या है तो परोस मत वाक्य होते हुए। अच्छा अच्छा